एक विराट व्यक्ति को एक कालजयी महामानव एक आज परंपरा के स्तंभ जिन्होंने अपनी वाणी से अपनी अनुभूतियों से सारे विश्व को खाली नाम में बना दिया है। तुलसीदास जी ने लिखा था सिया रामो में सब जग मानी, लेकिन इसमें थोड़ा सा अद्वैतवाद है। महाराज जी ने कहा है हर किसी के मुख से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण हो, उसके बाद समदर्शिता आएगी। ये तो सिद्धांत की बातें हैं जिन्हें महाराज जी गूढ़ अर्थ में अपने प्रवचनों में प्रकट करेंगे। श्री महाराज जी 16 बार विदेश विश्व यात्रा कर चुके हैं और अब हम देख रहे हैं कि सारा विश्व इस हॉल में बैठा हुआ है। महापुरुष सीमाओं में नहीं रहते, वो किसी नक्शे में आबद्ध नहीं रहते। जैसे श्री कृष्ण सर्वव्यापक हैं, ऐसे ही उनके भक्त भी सर्वव्यापक हो जाते हैं। वो किसी खास व्यक्तियों के बन के नहीं रहते। यदि वो ऐसे हो जाए तो सारे जगत के उद्धार का भार जिसके लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उनको यहाँ पर भेजा है उसको कौन संभालेगा। कल श्री महाराज जी का परिचय दिया गया और महाराज जी को अच्छा नहीं लगता उनके परिचय में कुछ कहा जाए, परंतु जब भावों की प्लावन हो, जो इन भावों में सरोवर कर रहा हो, क्या उस वाणी को कोई रोक सकता है। यदि यहाँ पे एक एक महाराज जी के भक्त को उठाकर खड़ा कर दिया जाए तो यह मेरा अपना विश्वास है कि उनका एक एक भक्त एक एक ब्रह्मांड को कृष्णमय बना सकता है। ऐसी दृढ़ निष्ठाएं, ऐसे दृढ़ सिद्धांत, लगता है कि वो जो शर गोस्वामियों ने जो चेतना हमारे यहां जगाई थी वो चेतना वापस जा रही है। मुझे क्षमा करें है कहते हुए क्योंकि जन्म स्वामी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो मेरे महाराज जी के साथी हैं, इन दोनों ने संन्यास साथ में ग्रहण किया, उनको लोगों ने उनके अप्रकट होने के बाद पहचाना, लेकिन हमारे महाराज जी ने अपनी पहचान जीते जागते करा दी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ महाराज जी करीब 60-60 इयर्स तक भारत की सीमाओं से बाहर नहीं गए, जिनको हरिनाम संकीर्तन से फुर्सत नहीं है, जिनको रात दिन षट गोस्वामियों के ग्रंथ के अध्ययन से फुर्सत नहीं है, उनको जरूर ऊपर से ऐसा कोई आदेश प्राप्त हुआ है कि तुम्हारा जीवन खाली भारत के लिए नहीं संपूर्ण जगत के लोगों पर कृपा करने के लिए है। हमारे ब्रजवासी महाराज विशेष रूप से बजनाथ से कहते कि ये हमारे लिए अक्रूर है, हमारे महाराज जी को बाहर ले जाता है। बजनाथ जी एक्सक्यूज मी, एवरीबॉडी कॉल यू अक्रूर। लेकिन मैं जब महाराज जी के लिए बोलना शुरू करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी। जिनको देखने के मात्र से स्फूर्ति होने लगती है, ऐसा लगता है ऐसी कौन सी लीला में डूबे हुए हैं वो। जब वो अपनी झुकी आंखों को ऊपर उठाते हैं तो लगता है सारे कलमश को हर लेंगे, बचा क्या, क्या रखे वो अपने पास, सर्व समर्पण हो जाता है। और जब वो स्मित करते हैं अपनी भोली मुस्कान से तो ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे ऊपर न्यौछावर कर दिया, और जब व्यंग से देखते हैं तो ऐसा लगता है अभी भी संसार की वासनाएं मेरे पास है और मेरे सामने बड़े भोले बनकर आ रहे हो। महाराज जी की निगाहें अंदर तक विद्ध कर देती है। ऐसी विद्धता ऐसी सिद्धता किसी महापुरुष में नहीं, वो तो गोलोक धाम या वृंदावन धाम के किसी खास परिकर में हुआ करती है। ये राधा जी श्री कृष्ण के अपने निज जन हुआ करते हैं। इनको समझना और पहचानने के लिए हमारी भावनाओं का उदात होना बहुत जरूरी है। मतिशन गुप्त ने कहा था, राम तुम्हारे बारे में मैं क्या लिखूं? जब मैं तुम्हारे जैसा बन जाऊंगा तब मैं समझूंगा कि राम क्या है। महाराज जी की जो अवधारणा है उसको पहचानने में हमारे किसी में भी क्षमता नहीं है। आज क्योंकि मैं सबको लग रही होंगी जब चुप हो जाए तो महाराज जी बोले तो इसलिए संदेश महाराज जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। वसुदेव जी के भाई देव भाग जी के पुत्र उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं। सारा ज्ञान करा दिया लेकिन श्री कृष्ण बोले कि ये सुबह सखा के समान मेरे भावों को कुछ कुछ जानता तो है लेकिन बृहस्पति देव ने जैसे खुद कभी प्रेम शास्त्र नहीं पढ़ा इसलिए इनको भी प्रेम शास्त्र का कुछ ज्ञान नहीं है। और यदि मैं बिना व्रत में भेजे इनको प्रेम शास्त्र का ज्ञान करा दूं तो ये समझेगा नहीं, इसलिए ब्रजवासियों के दर्शन कराने के लिए उन्हें उद्धव को भेज दिया। और अब हम उद्धव संदेश सुनेंगे महाराज जी के मुख से। मैं अपना वक्तव्य मन को नहीं करता लेकिन मैं समाप्त कर रही हूँ इस कविता के साथ। श्याम मन श्याम तन श्याम ही हमारो धन, उधो आठो याम हमें श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, आंधी किसी लागुरी आधार श्याम नाम है। श्याम ने है श्याम के है श्याम ही हमारो देह, श्याम सुख धाम सो भलाई शोभा धाम है। उधो तुम भय बारे पाती लेके आए दौरे, जोत कहाँ राखे जहाँ रोम रोम श्याम है। जोत कहाँ राखे जहाँ रोम रोम श्याम है। पतित पावन पतित पावन भगवान राम को कहा गया लेकिन कलयुग में कोई पतित नहीं है, पतित वो है जो वैष्णव अपराध कर रहा है। अरे क्या रावण के जैसे इतने लोगों को कोई मार सकता है क्या? कंस के जैसे अत्याचार आज भी कर सकता है? नहीं, पतित वो है जो लोग गौरवाणी का प्रचार नहीं कर रहे, पतित वो है जो भगवान राधा कृष्ण का भजन नहीं कर रहे। तो ऐसे पतितों के उद्धार के लिए पावना से मैं अपने गुरुदेव श्री तिरंगी स्वामी भक्ति वेदान परिव्राजकाचार्य वर श्री परिव्राजकाचार्य किसको कहते हैं जो जगह जगह घूमकर लोगों को भक्ति भाव में डुबोते हैं उनको परिव्राजक कहते हैं, उनमें भी जो सर्वश्रेष्ठ हैं ऐसे महाराज जी को मैं हम सब की तरफ से उनके चरणों में उनके पाद पद्मों में अनुरोध करती हूँ कि आप हम सबको जिस लिए हम बैठे हैं उसमें डुबा वाणी
ढागा जी कीर्तन करेंगे। ढागा जी अभी आए नहीं,
बोलते आपने फवार पर माथा रेस्ट करो
और बीच में अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो भातरयाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयम् तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति राधे तन्ने माम् चरणं मैं कथा आरंभ के पहले अपने परमाराध्यतम ओम विष्णु बात अष्टोत्तर शास्त्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि बार नमन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित त्रिदंडी सन्यासीगण ब्रह्मचारीगण वैष्णव वैष्णवी एवं सज्जन महोदय हमारा यथा योग्य अभिवादन में विषय गंभीर है तो भी इस पर कुछ मैं अपने अभिव्यक्तियों को आप लोगों के निकट प्रकाश करने का चेष्टा करूंगा। अभी बेटी मधु ने हमारे संबंध में कहा हमें अतिरोक्ति लगती है बहुत अधिक, ये इसकी गुरु निष्ठा का परिचायक है कि तो वो सब गुण हमें नहीं है, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। जो कुछ मैंने गुरु जी के निकट वैष्णव के निकट सुना है आपके निकट मैं बतलाने की चेष्टा करूंगा सरल और सहज भाषा, ये आप लोग भी समझ सकें। इस संसार में जीव मात्र दुखी है, जीव मात्र ही दुखी है, अधिक विचार करने पर यह ठीक होगा, इसलिए तो वो सुख चाहता है। यदि वो सुखी होता उसका सुख कई धारावत अविच्छिन्न गति से निरंतर बना रहता और उसको भी दुख की छाया न होती तो फिर सुख की जरूरत क्या थी, तो सुख था ही। किंतु मैं देखता हूं राष्ट्र संघ से लेकर बड़े धनाढ्य और संपन्न राष्ट्र अमेरिका और क्षुद्र देशों और व्यक्तियों तक कोई भी सुखी नहीं है, निरवच्छिन्न परस्पर भयभीत है। अमेरिका का उद्विग्न होना भयभीत के कारण है, भयभीत हो रहा है, उद्विग्न है। इसी प्रकार से लोग सुखी होना चाहते हैं क्योंकि दुखी है। तो बात एक ऐसी भी है जो सुख मिलता नहीं है कभी, ऐसी बात नहीं मिलता है। पति पुत्र भाई बंधुओं के स्नेह में उनको कुछ मिलता है किंतु बहुत थोड़े दिन, बहुत थोड़े। बुढ़ापा जरूर होगी, चाहे समस्त डॉक्टर लोग विश्व ब्रह्मांड के और साइंटिस्ट लोग मिलकर के भी करें, बुढ़ापा जरूर आएगी, उन डॉक्टरों को भी आएगी, बल्कि उनको ब्लड प्रेशर अधिक रहेगा और अधिकांश डॉक्टर लोग ब्लड प्रेशर से ही समाप्त हो जाते हैं, दूसरों का कष्ट अपने सिर पर लेते हैं, बड़े चिंतित रहते हैं, रात में उनको नींद भी नहीं आई। तो इस बुढ़ापा को तो कोई एक सेकेंड रोकने वाला नहीं, और मृत्यु मृत्यु को कोई भी टाल नहीं सकता। हाँ, कुछ लोग नारद जी जैसे, हनुमान जी जैसे, शंकर जी जैसे लोग अजर अमर हैं, उनको मृत्यु या काल कुछ नहीं कर सकता, इसे अतीत है। उन्हें आग और ये सब चीजें कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये लोग काल जय पुरुष हैं क्योंकि भक्तिमान है। बाकी सब लोग चाहते हैं सुख, किसी सभी सुख को ढूंढ रहे हैं न किसी रूप में। ये सुख क्या है, ये सुख क्या है? आनंदमयम ब्रह्म, ब्रह्म आनंदमय रसो वैश, या रस सम स्वयं रस है, रस का स्वादन भी करता है, रस है। तो उस सुख को हम लोग खोज रहे हैं सभी। कोई भी अपने सुख से संतुष्ट नहीं है इस संसार में, कोई भी, और चाहिए और चाहिए। पत्नी नहीं है, सुंदर पत्नी चाहिए, पत्नी मिल गई सुंदर बेटा चाहिए, वो भी मिल गया और लालसा, मैं अपने समाज का मुखिया बनूं, देश का कर्णधार बनूं, प्रधानमंत्री बनूं, राष्ट्रपति बनूं, और उसे संतुष्ट न होकर के मैं सारे विश्व को अपने मुट्ठी में, हिरण्यकश्यपु इत्यादि ऐसे ही। तो कोई भी अपने सुख से संतुष्ट नहीं है, होना तो चाहिए किंतु है नहीं। इसलिए ये ढूंढ रहे हैं किसको, सुख। किंतु सुख क्या है, यह ब्रह्मानंद लौकिक दुखों से ऊपर उठा हुआ, भगवान के अतिरिक्त तो कोई भी आनंदमय नहीं है, हम उसके पार्ट और पार्सल हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राश ममई मंसो जीव लोके जीव भूत सना। हम सभी उसके अंश हैं, सुख के आनंदमय सचिदानंदमय है, हम उनके अंश हैं, तो हमें भी कुछ आनंद है। किंतु अभी भगवान को भूलने की वजह से वो सुख भी भूल गए, आनंद, इसलिए हम सुख को ढूंढ रहे हैं। इसलिए सभी किसी न किसी रूप में पर ब्रह्म को ही ढूंढ रहे हैं, किंतु पता नहीं ये क्या ढूंढ रहे हैं। ढूंढ तो रहे हैं आनंद को, और आनंद कहाँ है, ये कृष्ण में ही आनंद है, वो पर ब्रह्म है, वो रस स्वरूप है। आप लोगों ने सुना होगा God is love, love is God. भगवान क्या है, प्रेम है, प्रेम की मूर्ति है, अखिल रसामृत सिंधु है, निगम कल्प तरुण ललितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रवसंजितम पिबत भागवतम रसम मालनम हो रहो रसिका गोपाल। तो ये कृष्ण जो है साधारण वारिय नहीं है, समझो तो यशोदा नंद बाबा के ये पुत्र हैं, और ये परब्रह्म हैं, इनके समान जगत में नहीं, न तस्य सम तत्समस्य अधिकस्य, इनसे बढ़कर के कोई नहीं है। वृंदावन में ग्वारियां हैं, बच्चों के साथ में खेलते हैं, यशोदा मैया उस परब्रह्म को कान उमेच देती हैं, रस्सी से बांध देती हैं, डराती हैं, धमकाती हैं उस ब्रह्म, और उसमें वो बड़ा आनंदित होता रोता है, किंतु रोने में भी उसकी बड़ा आनंद है। उसको भक्तों से उलाहना पाकर दंड पाकर के वो रोता तो है, किंतु भीतर से उल्लसित होता है। उसको हम लोग सभी ढूंढ रहे हैं। तो जब तक ऐसा परम ब्रह्म आनंदमय ब्रह्म नहीं मिल जाएगा, तब तक हम ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। कोटि जन्मों से ढूंढ रहे हैं, एक दो जन्म से नहीं, कोटि कोटि करोड़ों जन्मों से ढूंढ रहे हैं। कभी हम लोग देवता भी बने, कभी दैत्य हुए, कभी सुकर कुकर गधे पशु पक्षी की पतंग, कितने जन्म हुए। और इस बार यदि जन्म खोज दिया उस ढूंढने में, तो क्या होगा, फिर उसी करोड़ों करोड़ों जन्म में जाना पड़ेगा और दुख भोगना। मनुष्य जीवन एक ऐसा है जिसमें भगवान को पाने के लिए, उस ब्रह्म को पाने के लिए, उस परम शांतिमय आनंदमय पर ब्रह्म को पाने के लिए मनुष्य ही अपने गुरु से इस चीज को प्राप्त कर सकता है, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। दूसरे जन्मों में नहीं होगा, वो बतलाएगा। शास्त्र बतलाते हैं जिस ब्रह्म को तुम ढूंढ रहा है, आनंद को तुम लोग ढूंढ रहा है, आनंद को पा उसको पाने के लिए शास्त्र में एकमात्र भक्ति बतलाई गई। उसका भजन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। करना तो चाहिए, किंतु श्रीमद् भागवत ये उसका क्या संदेश है? वो कहते हैं क्या भागवत, हाँ भजन करने के लिए तो और शास्त्र कह रहे हैं, जो भजन करो उससे मिलेगा। किंतु भागवत कहते हैं कि नहीं, यह ठीक नहीं, तुम क्या भजन कर लोगे? तुम भगवान को खुश नहीं कर सकते। भगवान बड़े दर्दी हैं, बड़े प्रेमिक हैं, वो जीवों के लिए रोते हैं। जो हमारा ये अंश जीव और दुखी होकर के कोटि कोटि कल्पों से हमें भूल रहा है, इसलिए बड़े दयालु कृपा करके वो खुद खोजते हैं, हमें बुलाते हैं, बंसी के टेर पर बुलाते हैं, किंतु वो बंसी का शब्द हम सुन नहीं पा रहे। जसोदा मैया को वो ढूंढते हैं, कहां गई मैया, दूध पान करना है। ग्वाल बालों को वो ढूंढते हैं, वो भंडी वन में ब्रह्मा जी ने उनके गौवे चुरा ले गए, बछड़े और सखाओं, और कृष्ण वन वन में उनको ढूंढ रहे हैं। वैसे भगवान हमको ढूंढ लेंगे, हम भगवान को ढूंढ नहीं सकते, हैं तो यही है, कहां ऐसा कोई अणु परमाणु नहीं, जीव का हृदय नहीं, यहां वो प्रभु नहीं विराजमान रहे, किंतु देख कहां पाते, वो सबको देखते हैं। इसलिए गोलोक धाम से, प्रेममय धाम से, वह प्रेम मूर्ति कृष्ण प्रेम को देने के लिए इस प्रेम भूमि ब्रज में प्रकटित हुए। इसलिए मनुष्य जन्म जिन्हें सफल वही मनुष्य है, सौभाग्यवान जीव है, जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, उनकी कृपा प्राप्त कर लिया। वो तैयार है, किंतु हम लोग उनकी बातें बंसी और उनकी आवाज नहीं सुनते, सुनने की चेष्टा कर लिया, तभी वह सुख हमारे सामने उतर आएगा, शांति उतर आएगी। इसके अतिरिक्त सुख और शांति